आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पैनल डिस्कशन है उसमें अगर किसी भी भाई या बहन के कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न एक स्लिप पर रख लिख सकते हैं। हमारी बहन यहाँ खड़ी है, आप अपने प्रश्नों को एक स्लिप पर लिखकर बहन को दे सकते हैं। तो जैसा समय मिलेगा हम अपने पैनलिस्ट से जरूर आपके प्रश्न पूछेंगे। और एक और अनाउंसमेंट है, जो हमारा ये कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप जिन भी भाई बहनों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो भी हमारे डेलीगेट्स हैं उनमें से जिन्होंने भी वो ज्वाइन नहीं किया है, कृपया मैं आपके सामने नंबर अनाउंस कर रही हूँ, उस नंबर पे आप एक मैसेज डाल दीजिएगा, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो जो भी इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, जो भी प्रेजेंटेशंस भी अगर किसी को चाहिए हो तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएंगी। नंबर है 9414-9414-00-3961। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 9414-00-3961। ये इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज बस ये डाल दीजिएगा ज्वाइन मी, तो वहाँ पे आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। 9414-00-3961, इसे आप पहले सेव कर लीजिएगा इस नंबर को, और फिर आप इस नंबर पे एक मैसेज डाल दीजिएगा और आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, हर जो हमारा सेशन है उसकी वीडियो YouTube पर लाइव जा रही है और पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी लाइव जा रही है। तो इसीलिए आपको जो भी उनके लिंक्स हैं, अगर आप किसी और को भी भेजना चाहें तो वो लिंक्स आप उनको भी भेज सकते हैं। ओम शांति। हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो उससे पहले एक एक्टिविटी आप सभी के साथ करना चाहेंगे। सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? सभी के हाथ नहीं उठते दिखाई दे रहे हैं। ओके, एक्टिविटी बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ आपको कुछ कमांड्स दूंगी। आप लोग टीचर्स हैं, यूजुअली आप लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन यहाँ हम विद योर परमिशन आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स देना चाहेंगे। तो इज इट ओके? ओके, लेकिन इस एक्टिविटी के कुछ रूल्स हैं। जब मैं आपको कमांड दूंगी या मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, मैं जब उसमें कहती हूँ कब, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया कब खड़े हो जाइए, तो जब मैंने उसमें कब लगाया, CUB कब लगाया, आपको तभी मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। ओके, फिर से मैं बताऊं, CUB कब, जब मैं अपने किसी भी इंस्ट्रक्शन से पहले कब लगाऊंगी तभी आपको क्या करना है, मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, नहीं तो आपको मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं मानना है। तो ठीक है, चले, कब खड़े हो जाइए। नेक्स्ट सेशन से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, इतना धीरे धीरे अगर खड़े होंगे तो एक्टिविटी कंप्लीट ही हो जाएगी। थोड़ा सा भी क्या करना है, एक एक्सरसाइज मोड में आना है। ओके, कब बैठ जाइए, कब खड़े हो जाइए, कब हाथ उठाइए, कब हाथ नीचे करिए, कब स्माइल दीजिए, कब बैठ जाइए, खड़े हो जाइए।
अभी आप जानते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेटर्स. तो जो जो खड़े हो गए वो एथिकली अभी बैठे रहिएगा, यानी आप लोग क्या हो गए, डिस्क्वालिफाई हो गए. ओके, कब खड़े हो जाइए, कब घूम जाइए, कब हाथ हिलाइए, कब हाथ नीचे करिए, कब हाथ ऊपर करिए, नीचे करिए. जिन्होंने नीचे किया वो ईमानदारी से नीचे बैठ जाइए. कब नीचे हाथ कीजिए, कब बैठ जाइए, कब उठ जाइए, थक गए होंगे ना आप तो बैठ जाइए. चलिए, ओके, थैंक यू सो मच. ओम शांति,
ओम शांति. अभी हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और जैसे हमने कहा हमारा ये जो सेशन है इट्स अ पैनल डिस्कशन, और इस पैनल डिस्कशन के लिए हमारे एमिनेंट पैनलिस्ट को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी. सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आदरणीय राजयोगिनी किरण बहन जी को. आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन विंग के मध्य प्रदेश से, खास आप भोपाल से आए हैं और हमारे बहुत ही पुराने इस एजुकेशन विंग के मेंबर हैं, तो कर्तव्य ध्वनि से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. हमारे बीच में हैं आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी, आप वाइस चांसलर हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी से सीकर. खास आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और आज हमारे पैनलिस्ट हैं, आपका भी मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं. आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी को आपका भी कर्तव्य ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत है. प्रोफेसर सुरेश कुमार जी, आप डायरेक्टर हैं ईस्ट दिल्ली कैंपस एंड फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है. और हमारे बीच में हैं आदरणीय डॉक्टर ईवी गिरीश जी, आप रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं मुंबई के और बहुत सुंदर मोटिवेशन के सेशंस आप लेते रहते हैं. आप एक राजयोगा एक्सपर्ट भी हैं, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है. तालियों की गूंज को जारी रखिए क्योंकि हमारे गेस्ट आए हैं इतने दूर से, तो उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए. हमारे बीच में डॉक्टर अमरजीत कौर जी हैं डायरेक्टर जेंडर स्टडीज सेंटर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी दिल्ली, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत. और साथ में डॉक्टर विमल प्रजापति जी, जॉइंट डायरेक्टर कमिश्नरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गांधीनगर, आपका भी इस पैनल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है.
ओम शांति. जैसे कहा कि आज एक बहुत ही सुंदर विषय पर हम मंथन करने के लिए बैठे हैं जो सिर्फ एक सामाजिक या व्यवहारिक स्तर तक सीमित नहीं है लेकिन आंतरिक स्तर तक जाता है, और विषय है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेटर्स. और ब्रह्म कुमारी इसमें हम कहते हैं कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट बीइंग इन अलाइनमेंट विद योर हाईएस्ट सेल्फ, विद योर एलिवेटेड सेल्फ. क्योंकि आज के समय में जहां इतना कॉम्पिटिशन है, जहां इतना कंफ्यूजन है, एक अगर हम शिक्षक की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वो सिर्फ एक पॉलिसीज को फॉलो करने तक सीमित नहीं है. लेकिन उसे अगर कहा जाए तो वो एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है, क्योंकि कहा भी जाता है कि एजुकेटर्स आर एंकर्स ऑफ एथिक्स, दे आर गार्जियंस ऑफ सोल। तो कहने का भाव ये कि हम कैसे इस पूरे विषय को एक होलिस्टिक वे में देखें, जहां पे ना सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स प्रभावित होते हैं बल्कि एजुकेटर्स भी प्रभावित होते हैं। तो इस विषय पर हम बात करना चाहेंगे। और हमारे बीच में बहुत एमिनेंट पैनलिस्ट हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न पहले हम अपने सारे आदरणीय पैनलिस्ट का स्वागत करेंगे फूलों के साथ और बैजेस के साथ। आदरणीय किरण बहन जी, हमारे बीच में आदरणीय अनिल कुमार राय जी भी हैं, वाइस चांसलर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर सुरेश कुमार जी, डॉक्टर अमरजीत कौर जी और डॉक्टर विमल प्रजापति जी और आदरणीय गिरीश भाई। ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी हैं। तो भ्राता जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि यूजुअली जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि एजुकेटर्स पर भी लागू होती है। जब हम वैल्यूज की बात करते हैं उसे सबसे पहले एक एजुकेटर को अपने अंदर उतारना होता है। तो एक टीचर कैसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स को मेंटेन करे, उसका बैलेंस बना के रखे, और कैसे उसका ये आपको लगता है प्रभाव एक स्टूडेंट पर भी पड़ता है?
सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर विषय पर आज चर्चा रखी गई है। ये विषय सिद्धांतिक रूप से बहुत ही सहज और सरल दिखता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत ही कठिन है, क्योंकि नैतिकता की जब हम बात करते हैं, उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं, तो शुरुआत अपने से होनी चाहिए, लेकिन हम प्रायः बच्चों को, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने की बात करते हैं, प्रायः विद्यार्थियों को नैतिक होने की बात करते हैं। लेकिन जैसा कि बहन ने प्रश्न किया कि इस बदले हुए समय में, कुछ समय पहले अभी बहन शिवानी जी चर्चा कर रही थी और कह रही थी पिछले 30 साल में कैसे क्या बदला है। शिक्षक आज बड़ी चुनौती से गुजर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो उसका परिवेश ही है, जिस परिवेश में वो जी रहा है, जो उसके आसपास सब घटनाएं घट रही हैं, उससे वो भी अछूता नहीं है। समाज उसको, जो पुराने हमारे ऋषिकुल परंपरा के शिक्षक रहे हैं, उनके समकक्ष देखने की कोशिश करता है। समाज चाहता है कि वो वैसा रहे, लेकिन उसके लिए माहौल वो वाला नहीं है जो उन ऋषियों के पास था। उसके पास बहुत ही अत्याधुनिक, बहुत ही विषम किस्म की, बहुत ही घालमेल सी परिस्थिति है जिसमें वह जी रहा है। जो विद्यार्थी उसके पास पढ़ने के लिए आ रहा है, ज्ञान लेने के लिए आ रहा है, सूचना के लिए आ रहा है, वो विद्यार्थी भी लगभग उसी तरह की परिस्थितियों से आ रहा है। उसके में बैलेंस, जो संतुलन की स्थिति है, वो बहुत ही गड़बड़ हुई है। उसके भीतर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और चल रहा होता है, वो बनना कुछ और चाह रहा होता है, करता कुछ और है। ये एक बहुत ही विषम जटिल परिस्थिति आज युवाओं के सामने, खास करके विद्यार्थियों के सामने है, कि मां बाप की अपेक्षाएं कुछ और हैं, वो करना कुछ और चाह रहा है, वो समझाना कुछ और चाह रहा है, लोग समझते कुछ और हैं। तो इन टीचर टॉट जो रिलेशन है, उसमें स्वाभाविक है कि विद्यार्थी शिक्षक से कुछ और चाह रहा है, शिक्षक विद्यार्थी को कुछ और दे रहा है, दोनों में संतुलन नहीं बन पा रहा है। जो नॉलेज का लेवल है शिक्षक के पास नॉलेज पिछले 10 साल 20 साल 25 साल पहले का है, किताबों का ज्ञान है, शोध पत्रों का ज्ञान है। जो किताबों और शोध पत्रों का ज्ञान है वो कुछ पुराना पुराना सा है, विद्यार्थी के हाथ में जो गजट है वो बहुत नया नया सा है। तो ऐसे में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अंतराल गैप सा बनता जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि उस गैप को कैसे खत्म किया जाए। गैप को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी 2020 में देश में आई है और उसने बड़ी पहल की है, और लगभग 185 साल बाद मैकाली की नीति को पीछे करके और एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारतीयता को ध्यान में रख करके, जो नैतिकता को ध्यान में रख करके, जो मूल्य परकता को ध्यान में रख करके ये शिक्षा नीति बनी है। यानी कि जो ये गैप हो गया था, विद्यार्थी को लगता था कि हमें ये करना है, शिक्षक हमें वो करवाने के लिए योग्य ही नहीं है। शिक्षक को ये लगता है कि हमें विद्यार्थी को ऐसा बनाना है लेकिन वैसा विद्यार्थी नहीं मिल रहा है, वो अच्छे शिष्य की तलाश में घूम रहा है और शिष्य अच्छे गुरु की तलाश में घूम रहा है, दोनों को कोई नहीं मिल रहा है। इस गैप को खत्म करने के लिए एक बड़ा पहल भारत सरकार की तरफ से हुई है, शिक्षाविदों की तरफ से हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मूल भावना है उस मूल भावना को अगर हम देखें तो जो आपका प्रश्न है उसका समाधान निकलेगा वहां से। शिक्षकों को कहीं ना कहीं अपने आप को विद्यार्थियों के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अभी वो अपने लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, अभी हमें अपने लिए अपने आप को तैयार नहीं करना है। अभी हमें अपने वेतन के लिए विद्यार्थियों को नहीं क्लासरूम में पढ़ाना है, अभी हमें नौकरी करने के लिए सिर्फ काम नहीं करना है, क्योंकि नौकरी के लिए काम करना है, वेतन के लिए काम करना है, तो धरती पर बहुत से काम है और इससे अच्छे काम है, धन की दृष्टि से भी इससे बेहतर है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो स्वाभाविक है कि समाज की, परिवेश की, राष्ट्र की, सबकी हमसे अपेक्षाएं अलग है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे पीढ़ी को तैयार करना है जो राष्ट्र का भविष्य है, और वो कहीं ना कहीं ऐसे मार्ग पर चल दिया है जो भविष्य को गर्त की तरफ ले जाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जिस नैतिक जिम्मेदारी की बात करें। इसलिए आप देखें कि इस अध्ययन प्रणाली में पाठ्यचर्याओं में जिस तरह से परिवर्तन किया जा रहा है और उसमें विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम का हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, लेकिन उसको मूल्य परक शिक्षा जरूर लेना है, उसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जरूर लेना है, उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन जरूर लेना, ये कंपलसरी कंपोनेंट हो गए हैं। अब उसको देने के लिए स्वाभाविक है कि शिक्षक को तैयार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपका था कि शिक्षक अपने आप को, शिक्षक को अपनी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा, उसको अपने आप को उन लोगों के साथ नहीं खड़ा करना पड़ेगा, उन लोगों की मनोस्थिति से अपने आप को जोड़ करके कदम ताल नहीं करना पड़ेगा जो समाज के दूसरे अन्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि वह किसी गलत क्षेत्र के प्राणी हैं, उनके व्यवसाय की अपनी जरूरतें होती हैं, वह अपने व्यवसाय, राजनीतिक व्यक्ति है उसके व्यवसाय की अपनी जरूरत है, वो अपने हिसाब से काम करता है, व्यवसायी है उसके व्यवसाय की अलग जरूरत है, उसके हिसाब से काम करता है। हम नहीं कह रहे हैं कि वह नैतिक अनैतिक है, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र के हैं, हमारे कंधे पर पूरा भविष्य टिका हुआ है। तनिक भी कंधा हमारा कमजोर हुआ, तनिक भी कंधा हमारा असंतुलित हुआ तो भविष्य जो है लड़खड़ाता गिरता दिखेगा। तो इसलिए ये चुनौती, जिस चुनौती पर आज चर्चा हो रही है, उस चुनौती को हमें स्वीकारने की जरूरत है और जिस नैतिकता की हमें जरूरत है, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी को सिर्फ ज्ञान नहीं देता है बल्कि शिक्षक जो है विद्यार्थी का एक तरह से मार्गदर्शक होता है, सिर्फ टीचर नहीं बल्कि मेंटर होता है, वो उसका मार्गदर्शक होता है, सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता है, जैसा वो होता है विद्यार्थी उसको देख करके वैसा बनने की कोशिश करता है। तत्काल वो क्लासरूम में भले ही ना कोशिश करे, हो सकता है कि क्लासरूम से निकलने के बाद अपने गुरुजी को याद करके वो ऐसा बनने की कोशिश करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षकों को अपने भीतर उस आदर्श की उस नैतिकता को लाने की जरूरत है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है, जो आज के युवा पीढ़ी को, आज के विद्यार्थियों को अति जरूरी है, जिसकी चिंता यहाँ पर की जा रही है इस चार दिन के कार्यक्रम के माध्यम से। तो मैं पूरी और अच्छी बात है कि शिक्षक समुदाय के हमारे बीच लोग हैं, तो ये संकल्प तो हमें लेना पड़ेगा। बिना इस संकल्प के, दीदी कह रही थी संकल्प से संसार बनता है, हम कह रहे हैं से संकल्प से हमें अपने समाज को बनाना है। समाज बनेगा तो समाज ही हमारा संस्कार है, समाज ही हमारा राष्ट्र है, और उसकी जो नींव है वो हमारी युवा पीढ़ी है, विद्यार्थी हैं। तो मुझे लगता है कि इस संकल्प के साथ अगर हम काम करेंगे कि हम दूसरे की बुराई न, कह रही थी दीदी कि हम की बात न करें, मैं की बात करें, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, इसकी हम चिंता करें, लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारा दूसरा शिक्षक क्या कर रहा है, उसकी चिंता न करें। तो अगर मैं की चिंता हम करना शुरू कर देंगे और मैं ठीक होने की तरफ जाने लगेगा, मैं नैतिक होने लगेगा, मैं विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदार होने लगेगा, मैं अपने संस्थाओं के प्रति जिम्मेदार होने लगेगा, तो जो चिंता हम करें उस चिंता का समाधान बहुत जल्दी मिल जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आपने बात की कि हमें जो है एक शिक्षक को तैयार होना होगा, तो मेरा अगला प्रश्न गिरीश भाई से रहेगा। गिरीश भाई, जैसे कहा जाता है कि इट्स नॉट व्हाट वी टीच बट इट्स आल्सो अबाउट आर वाइब्रेशंस, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कहा जाता है कि एक शिक्षक एक गार्जियन की तरह होता है, तो उसकी एक प्यार भरी मुस्कुराहट, उसकी एक शांत उसकी स्थिति, उसका कैसे प्रभाव पड़ता है एक बच्चे पर, और आपको क्या लगता है कि कैसे हम अपने व्यवहार से या अपनी वाइब्रेशन या सोच से उसे एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन दे सकते हैं। और सभी पैनलिस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अगर 2 या 3 मिनट में करें तो क्या है भाई जी, हमारे पास बहुत प्रश्न है, हम सब कवर कर सकते हैं।
आदरणीय मंच और आदरणीय सभा और मेरे श्रेष्ठ गुरुजन, बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। ये प्यार है, इतना हल्का ठंडा नीरस, प्यार से कहिए ओम शांति। अब ये हाल हो गया कि प्यार भी मांगना पड़ रहा है, ठीक है ना। ओके, थोड़ा मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा के कहिए ओम शांति। यहां तो आपस में आप बहुत प्यार से मुस्कुरा के ओम शांति कर पा रहे हो, एक सभा में पति पत्नी साथ में बैठे थे, बोला वो नहीं हो सकता है, ठीक। ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग, ठीक। थोड़ा उमंग उत्साह से कहिए ओम शांति। चलिए मैं 2-3 मिनट में ही इसको समराइज करूंगा। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा कहावत है, वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट, वैल्यूज आर कॉट। हम किसी को मूल्यों के बारे में, श्रेष्ठता के बारे में लेक्चर देके, प्रेजेंटेशन देके, क्लासरूम में भाषण करके नहीं सिखाया जा सकता है। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ यू, जैसे आदरणीय वाइस चांसलर जी कह रहे थे मुझे परिवर्तन होना है। और ब्रह्मा कुमारी इसमें, आपको मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं, तो मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जीवन का एक ही उद्देश्य था, बहुत पैसे कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, लॉट ऑफ रिचेस कमाना है। एंड मैं जब फाइनल ईयर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था बॉम्बे में, गलती से एक्सीडेंटली ब्रह्मा कुमारीज के संबंध संपर्क में आया, और चूंकि ब्रह्मा कुमारीज के कनेक्शन में आने से मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया। पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट, नाम शोहरत मान वॉज अ बाई प्रोडक्ट, बट खुद को चेंज करना, खुद के अंदर मूल्यों को भरना, दैट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब किया, लेकिन वहां आप जानते हैं कॉरपोरेट दुनिया कितना हार्ड प्रेस्ड होते हैं टाइम के लिए, सुबह 8 बजे जाओ, रात के 11 बजे आओ। आई सेड दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, मुझे बहुत समय चाहिए, लेकिन दाल रोटी की भी आवश्यकता थी। तो सोचा क्या करूं, किसी ने मुझे सजेस्ट किया टीचर बन जाओ। आराम की जिंदगी है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, आई वॉज अ टीचर फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, 10 years. बस जाकर पढ़ा देना है, खत्म करो. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने को कोई टेंशन नहीं है. मार्केटिंग में टारगेट, टाइमलाइंस, प्रेशर कुछ नहीं है. मैंने कहा ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ज्वाइन कर लो. सो आई बिकेम अ टीचर. और टीचिंग प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. आज मैं जिस स्थान पर भी हूँ, ब्रह्मा कुमारी का वैल्यू सिस्टम एंड इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स. आई शेयर ओनली वन एक्सपीरियंस, ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा. एक दिन टीचर्स डे का प्रोग्राम था, पोस्ट ग्रेजुएट हम MBA के स्टूडेंट्स को बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ा रहे थे. तो बच्चों ने कहा सर आज तो टीचर्स डे है, हम फ्रीडम चाहते. मैंने कहा तुम क्यों चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ. ठीक है ना, सिर्फ बच्चे ही मस्ती क्यों करें, टीचर भी थोड़ा टीचर्स डे को एंजॉय करे. तो उन्होंने कहा सर आप पढ़ाइए नहीं. मैंने कहा बिल्कुल मैं भी यही चाहता था कि मैं पढ़ाऊं नहीं. तो बोला सर हमको छुट्टी दे दीजिए. मैंने कहा मैं छुट्टी नहीं दे सकता हूं, नीचे ग्राउंड फ्लोर में डायरेक्टर का कमरा है, उनसे छुट्टी लेकर आइए. तो उन्होंने कहा आप लेकर आइए. मैंने कहा मेरे को डर लगता है डायरेक्टर से. तो उन्होंने कहा हमको भी डर लगता है. मैंने कहा तो फिर क्या कर सकते हैं. तो बात निकली तो उन्होंने कहा हम बाहर तो नहीं जा सकते, बट वी विल नॉट स्टडी एंड टीच. मैंने कहा ठीक है, वी विल स्पेंड गुड टाइम. मैंने कहा बिकॉज इट्स अ टीचर्स डे, देयर वर 60 स्टूडेंट्स, सो आई हैड अ चॉक स्टिक. मैंने कहा ईच स्टूडेंट टेल मी व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम अ टीचर. आपको टीचर में एक क्वालिटी बताइए जो आपके टीचर के पास होना चाहिए. और हर एक स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी बताना है. आप विश्वास नहीं करेंगे. और मैं सब नोट करता गया ब्लैक बोर्ड में. बच्चों ने पता है क्या कहा, फ्रेंडली होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए. एंड माई डियर वंडरफुल ऑगस्ट इंटेलेक्चुअल टीचर्स ऑडियंस, 60 के 60 वैल्यू लिखने के बाद एक बच्चे ने नहीं कहा कि टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए. और मैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट PhD पी, ताली क्यों बजा रहे हैं आप लोग, हर गलत चीज में ही ताली बजा रहे हैं. ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बस आई टेक वन मोर मिनट. ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया गया कि वो मूल्य जो हम चाहते हैं, वो कैरिंग, वो कंपैशन, वो अंडरस्टैंडिंग, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब ये ब्लर्ड हो जाता है विथ कंट्रोलिंग, विथ एडवाइजिंग, विथ मैनेजिंग, और हम टीचर्स बहुत अच्छी तरह सेल्फ अक्लेम्ड सर्टिफिकेट करते हम कितना बच्चों के लिए कर रहे, रोक आ रहे हो, हम कितना बच्चों, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं है. नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल. और ये बहुत फाइन लाइन है. जब मैं कंट्रोल, डिक्टेट, एडवाइस, किसी को एडवाइस पसंद नहीं है, सबको प्यार, शांति. बस एक लास्ट स्टेटमेंट कहता हूं. आदरणीय सर ने गुरु शिष्य परंपरा की बात की थी. वो गुरु शिष्य परंपरा, आज ही मेंशन इट, सच अ कॉम्प्लेक्स एंड अ प्रूलरिस्टिक सोसाइटी, कि यहां पर वो डिवाइन को यूज करना, उसके लिए शक्ति चाहिए. एंड देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. वी आर ऑल वेल इन्फॉर्म्ड, शायद हमारे बच्चे हमसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड है क्योंकि वो ऑलरेडी ChatGPT में पहले पढ़ के आ जाते होंगे. लेकिन वो नॉलेज अर्थात वो शक्ति, कुछ भी हो जाए, मैं आज 24 घंटे गुस्सा नहीं करूंगा, बच्चे कैसे भी बिहेव करें. मेरा जो सिद्धांत है, मैं जानता हूं कि मैं जब हमारा नया बैच आता है तो हम बच्चों के साथ शेयर करते, माई डियर स्टूडेंट्स आई एम योर सो एंड सो टीचर, विल टेक दिस सब्जेक्ट, 40 आवर्स थियोरी लेक्चर, 2 प्रैक्टिकल, 1 असाइनमेंट, 1 ग्रुप प्रेजेंटेशन, 1 यूनिट टेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, 60 मार्क्स यूनिवर्सिटी पेपर, एंड फाइनली ब्रह्मास्त्र, 40 इंटरनल मार्क्स मेरे हाथ में, एंड वी bifurcate 40 इंटरनल मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर पंक्चुअलिटी, 5 मार्क्स फॉर अटेंडेंस, 5 मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन, 5 मार्क्स फॉर योर एटीट्यूड. बच्चा पीछे बैठकर अपने दोस्त को पूछता है करना क्या है, द होल पर्पस इज डिफीटेड. कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, पूछूं, इज पंक्चुअलिटी वर्थ 5 मार्क्स, इज पंक्चुअलिटी वर्थ 5 मार्क्स, हु इज डिमीनिंग इट. हमने पंक्चुअलिटी को 5 मार्क्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. और वो बच्चा मेरे क्लास में मर मर के 8 बजे के क्लास में 7:59 पे पहुंच जाता है, और कदम रख करके टीचर को देखकर अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंटली कहता है 5 मार्क्स मिलना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वो मूल्य, उसके लिए वो शक्ति जो मेडिटेशन हमें देता है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, आई विल बी इंटीग्रेटेड, मेरी इंटीग्रिटी इन माई एक्शंस। मैं बच्चों के बैकग्राउंड लर्निंग बिहेवियर्स के आधार पर इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, सब समान है, सब एक है। उस भावना को हमको जागृत करने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक शक्ति, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा मुस्कुरा कर बैठे। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई। आपने बात की शक्ति की, और ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं ट्रू पावर कम्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस। आप जितना स्वयं की पहचान को बढ़ाते हैं, परमात्म पहचान को बढ़ाते हैं, उतनी आपकी आंतरिक शक्तियां और विकसित होती जाती हैं। तो मेरा अगला प्रश्न आदरणीय किरण बहन से रहेगा। किरण बहन, ब्रह्मा कुमारीज में सेल्फ अवेयरनेस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आपको क्या लगता है, एक शिक्षक, एक एजुकेटर इस सेल्फ अवेयरनेस को कैसे एनहेंस कर सकता है, या अगर कहें जो उनके स्किल्स हैं उनके साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकता है?
ओम शांति। सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आज सुबह के सेशन में आप सबने राजयोग मेडिटेशन सेशन में समझा, और जो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है उसकी अवेयरनेस आज हमने ना अच्छी तरीके से समझी। फिर मैंने देखा बाद में जब यहाँ पर आपसे ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी मिलने आई थी, तो उन्होंने आपसे 3 बार कहा ओम शांति, फिर दूसरी बार क्या कहा था ओम प्रेम, और तीसरी बार क्या कहा था ओम आनंद। क्या आपने इसका अर्थ समझा? ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा हूं और शांति की बनी हूं, है ना। शांति एक मुख्य गुण है मेरा, निजी गुण है, माना मैं ही शांति हूं, तो मुझे शांति चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट है। इसी तरह ओम प्रेम, माना मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं शांति हूं। अब जब किसी एजुकेटर को एजुकेट करना है स्टूडेंट को, तो बच्चा आपसे किताबों के बारे में शायद उतना नहीं पढ़ता जितना आपको डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग समय पर आपके रिस्पॉन्सेस को और आपकी क्रिया प्रतिक्रियाओं को नोट करता है। एम आई राइट? ऐसा होता है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो मीन्स माई एबिलिटी टू रिस्पॉन्स विद दोज वैल्यूज। अभी मैं 3 वैल्यूज की मुख्य बात करती हूँ जो आज हमने कही, शांति प्रेम आनंद, whatever may be the situation। अभी स्किल्स सिखाने में ये बातें कहीं आड़े नहीं आएंगी, बच्चे हमसे बहुत बेहतर तरीके से स्किल्स सीखेंगे। एक सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें आचार्य बनना है तो आचरण से ही बनना होगा। हमारे अंदर अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो हम बच्चों को वो चीजें सिखा नहीं सकेंगे। और इंटीग्रिटी सेल्फ अवेयरनेस से आती है, मींस माय थॉट्स, माय वर्ड्स, माय एक्शंस, दे आर ऑल अलाइंड विद द वैल्यूज। जैसे अगर मान लो किसी से कोई एमबीए का प्रोग्राम चल रहा है और बच्चों को रिस्क टेकिंग की बात हम सिखा रहे हैं, हायर एजुकेशन से कनेक्टेड लोग हैं आप, एंड वी से कि यू हैव टू बी रिस्क टेकर्स, तो बहुत जरूरी है कि बच्चा भी मुझे किसी सिचुएशन में अगर उसने देखा होगा कि यस मैम और सर रिस्क लेकर भी सही चीज पर खड़े रहते हैं, वो प्रॉपरली वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं जो सही है, तो वो सॉफ्ट स्किल भी आपसे सीख लेगा। तो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, दे विल गो टुगेदर। अगर इन सॉफ्ट स्किल्स में हम खुद ठीक नहीं है, तो हम उन्हें वो जो स्किल्स सिखाएंगे उनके प्रति भी उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हमारे अंदर ठीक काम करे, इसके लिए जरूरी है कि मेरा सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल ठीक हो। ब्रह्मा कुमारीज में हमें सिखाया जाता है कि स्वशासन, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स पर अपना कंप्लीट कंट्रोल हो, तो फिर उनको अनुशासन में रखने के लिए हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। अनुशासन मींस, अनु मींस आत्म, सेल्फ। तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हम खुद रहेंगे, और फिर हम कभी मर्यादाओं की लकीरें, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे। और अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे तो बच्चे भी क्रॉस नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली वो आपके रेस्पेक्ट भी करेंगे, और रिटर्न में आपको भी ध्यान रखना होगा, उनकी भी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उनकी भी जो प्राइवेसी है, जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं चाहते कि सबको पता चले, कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में है वो हम शेयर नहीं करेंगे। परमात्मा जब हमें पढ़ाते हैं यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में, बहुत ही सम्मान से हमें पढ़ाते हैं, इतना प्यार और सम्मान से। बाकी परमात्मा से कुछ छुपा हुआ थोड़ी है, पर हर एक की इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए उसकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाकर उन्हें शिक्षा देते हैं। तो वही प्रोसेस हम सबको भी सीखनी चाहिए, और इसी सेल्फ अवेयरनेस के साथ ही हम स्किल्स को शायद बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण बहन। आपने जैसे बताया कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें एलिवेट करना है, तो मेरा अगला प्रश्न प्रोफेसर सुरेश कुमार जी के साथ होगा। भ्राता जी, एक बार एक प्रोफेसर ने हमारे साथ एक अपना जीवन का अनुभव शेयर किया था कि एक बार एक कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक प्रोफेसर का एक मीम बनाया, एक वीडियो बनाया, और उसे सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया। लेकिन जो प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने उसको पर्सनली नहीं लिया, लेकिन क्लास में आए और बहुत प्यार से सारे क्लास में स्टूडेंट्स को बोला कि आप सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करते हैं वो आपके जीवन का एक दर्पण है, वो आपके वैल्यूज दिखाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या पोस्ट करते हैं, मर्यादा या मजाक। और फिर बहुत प्यार से उन्हीं प्रोफेसर ने एक कैंपेन स्टार्ट किया, रिस्पेक्ट मी, और सारे स्टूडेंट्स ने साथ में मिलके उस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत उनकी, प्रोफेसर की मदद भी की। तो मैं आपके व्यक्तिगत अनुभव से पूछना चाहूंगी, क्या कभी ऐसा हुआ आपके जीवन के इतने समय के अनुभव में कि कभी कोई एक ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आई हो जहां पे किसी स्टूडेंट का व्यवहार अच्छा ना रहा हो या उसके शब्द अच्छे ना रहे हो, लेकिन आपने अपनी स्टेबिलिटी से उसको भी एक मैसेज दिया और उसको जीवन में शायद परिवर्तन भी अनुभव हुआ हो?
आदरणीय बहन जी और सभी उपस्थित कुलीग्स, जैसा कि बहन ने कहा, पहले ये सोचना कि बच्चे ने मीन्स बनाया क्यों, उसको कहाँ पर उसको इस चीज के लिए जरूरत महसूस हुई है। इसका मतलब है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उसने इस चीज को, अपनी भावना को, अपनी उसको बात को एक्सप्रेस करने के लिए उसको इस टेक्नोलॉजी का, जिस टूल का, जिस मीडियम का यूज करना पड़ा। तो बहन, मेरा मानना ये है कि अब मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी और एज ए टीचर भी, मेरा जो छोटा सा एक स्लोगन रहता है, मैं शेयर भी करता हूँ अपने टीचर्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी, क्रिएटिंग एंड लिविंग इन ए स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट। एज ए टीचर्स, एज ए institution as an administrator also with my faculty stressed because of director, because of administrator, that will also get reflected in the classrooms also. So हमारा एक और एज ए टीचर आल्सो, अगर मैं एक क्लास के अंदर एक स्ट्रेस का एटमोसफेयर बना के रखता हूँ तो फिर बच्चा भी स्ट्रेस हो जाएगा और अपनी स्ट्रेस को निकालने के लिए वो आज की डेट में सोशल मीडिया या किसी ना किसी साधन का उपयोग करेगा. तो उसके लिए मेरी जो तीन चार तरीके हैं जिससे मैं बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, एक तो किसी भी समय मेरे ऑफिस का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, बच्चा कभी भी आके मेरे से बात कर सकता है. अगर मैं बिजी भी हूं तो उसकी दो मिनट के लिए तो बात सुन लूंगा, उसके बाद उसको टाइम फिक्स कर लेंगे या कुछ ना कुछ हम उसके लिए वो कर लेंगे ताकि बच्चा को किसी और माध्यम की जरूरत होने पर सीधा आके कंसर्न टीचर से बात करे, चाहे वो उसकी एकेडमिक से रिलेटेड है, चाहे पर्सनल है. आजकल बहुत सारी बच्चों को अटेंडेंस से लेके भी वो है, उनके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, प्रोफेशनल उनको आगे कैरियर के लिए तैयारी करनी होती है और कोचिंग चल रही है इस कारण से, लेकिन उनकी हम बात सुन लेते हैं. फिर डिसीजन तो यूनिवर्सिटी रूल्स के साथ ही उनको देना है, लेकिन एक बार उनकी बात सुन ली तो उनको उसी से स्ट्रेस कम हो जाती है. इसी तरह क्लास के बाद हम दो मिनट के लिए अगर रुक जाए, अगर किसी बच्चे को बात करनी है तो बात कर ले हमारे से. तो सबसे बड़ा जो एक मैं समझता हूं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की कि बच्चों के साथ उसका डायलॉग रहना चाहिए. कभी बच्चे को ये नहीं फील होना चाहिए, उसको ये ट्रस्ट रहना चाहिए टीचर है मेरी बात सुनेगा. फिर समाधान हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा वो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन एट ए फर्स्ट लेवल वी मस्ट लिसन टू आवर स्टूडेंट्स. ये मेरा एक मानना है. दूसरा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले सालों से काफी, कि जब बच्चों का वाइवा लेते हैं, जब बच्चों की सबसे पहले एक्सपीरियंस वाइवा के टाइम पे देते ना, मेरे को अपने आप को नहीं समझ पाया, लेकिन जब हम सीट पे बैठे और जब बच्चों की इंटरव्यू करते हैं, चाहे वो एमटेक एडमिशन थी या कोई फैकल्टी रिक्रूटमेंट की थी, तो अक्सर मैंने देखा है कि जो पैनलिस्ट होते हैं या जो टीचर होते हैं कैंडिडेट की खूब इंसल्ट करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम पांच अच्छे प्रोफेसर सामने बैठ गए हो और एक बच्चे से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और फिर आप उसको कंपेयर करते हो अपने साथ, तो फिर आप उससे इरिटेट होते हैं, उसके साथ मिसबिहेव भी करते हैं और भी करते हैं. तो वहां पे मेरे को लग रहा है कि एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या इवेल्यूएशन हमारी ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ मिसबिहेव करना हमारी हमें कहीं ना कहीं अपने आप को उसमें वो रखना है, क्योंकि वो फिर सिस्टम के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करता है और फिर स्ट्रेस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आज की डेट में रिफ्लेक्ट होती है. वो फिर बाहर जाके आपकी बारे में लिखता है, आप ओपिनियन लिखता है और लिखता है, बहुत सारे फोरम्स है उसके पास. तो मेरा जो पर्सनल मामला है, अब जब मैं कोई मीटिंग चेयर भी करते हैं और करते हैं, सबसे पहले पैनलिस्ट को कहता हूं कि आप जितने मर्जी नंबर लगाइए, चाहे जीरो लगाइए चाहे दो लगाइए चार लगाइए, लेकिन आप बच्चे की कैंडिडेट की इंसल्ट नहीं करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि तेरे को कुछ नहीं आता है. तो एक मेरे को लग रहा है कि एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को हम इवेल्यूएट तो करना ही है, वो तो हमारी एक प्रोफेशनल ड्यूटी है, लेकिन उसकी हम इंसल्ट ना करें कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है. तो वहां पे और क्वेश्चन भी इस तरह से पूछते हैं, पहला क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं कि क्या अगर नहीं आंसर दे पा रहा, थोड़ा सा उसको हिंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ज्यादा हिंट कर, फोर्थ में शायद उसको हम आंसर बता ही दें ताकि उसको कम से कम अगर वो क्लास में नहीं सीखा है तो वाइवा के टाइम भी कुछ सीख जाए. तो ये मेरा दूसरा मानना है. तो इन्हीं अगर तीसरा जब बात हो रही है तो एक पंक्चुअलिटी की भी बात है, टीचर को भी अपने आप में पंक्चुअल होना चाहिए और उसको भी एक अपने बच्चों के साथ उसी टाइप का आचरण भी उसका ठीक रहना चाहिए, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है. तो ये दो तीन इशू जो मेरे को लग रहा है एज ए टीचर हमें अपने आप में फॉलो करने चाहिए ताकि बच्चे के अंदर आज की डेट में सबसे बड़ी जो समस्या है, बच्चा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ना वो अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट कर पा रहा है, ना वो कॉलेज में या स्कूल में अपने टीचर को ट्रस्ट कर पा रहा है, और फिर वो ट्रस्ट किसको करता है, अपने फ्रेंड को ट्रस्ट करता है, और फ्रेंड के पास उतनी विजडम नहीं है, वो फिर उसको मिसगाइड करता है, चाहे वो ड्रग्स की तरफ मिसगाइड करे या किसी भी तरफ मिसगाइड करे, और डिप्रेशन की तरफ भी हो जाता है जब वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, अपनी बात नहीं कर पा रहा एक अच्छे आदमी से जो उसको सही रास्ता दिखा सके. तो ये छोटे छोटे मेरे अपने विचार हैं जो मैं आपसे. थैंक यू.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर सुरेश जी. आपने जैसे एक अनुभव बताया कि इंटरव्यू में एक ट्रेंड बना है कि जहां पे कैंडिडेट की इंसल्ट होती है, तो मेरा अगला प्रश्न डॉक्टर अमरजीत जी से रहेगा कि कई बार संस्था की भी कुछ ऐसी नीतियां होती हैं और अपेक्षाएं होती हैं जो कई बार हमारे अपने पर्सनल वैल्यूज से मैच नहीं खाती हैं, और जहां पर हमें कई बार निर्णय लेने में मुश्किल होती है. तो क्या आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है, और उस समय हम कैसे अपनी अंतरात्मा का सुने और उन वैल्यूज पर ही चलें, तो कोई अगर आपके ऐसे अनुभव हो।
जी, ओम शांति। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है एंड एज एन एजुकेटर आई थिंक एवरीबडी सिटिंग हियर वुड एग्री दैट वी ऑल कम अक्रॉस सच सिचुएशन नॉट वंस मेनी आर टाइम्स व्हेन यू नो द एंड स्पेशली द पीपल हु आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर there are certain policies which are made by the institutions for admissions, for evaluation and for you know upgrading etc. and the professor really you know gets into a dilemma that how should I deal with this situation because ethically he or she may believe that whatever the policy is guiding may not be in the interest of the student and we come across such you know situations which is very much true. Personally, I do have faced many such problem, but you know, instead of quoting those examples, let me just put across one situation. I will actually draw that situation from Professor Suresh what he was saying, and I would like to seek inputs from the audience or my colleagues here. Let's say you know there are two students who took assignment. You have given assignment, and they have submitted on the deadline. You when you are evaluating those assignments, you found that two assignments are, the answers are identical, very much identical, means either of the two students have cheated for sure. Now as an educator, what would you do in this situation? Anybody may please take the opportunity and tell me, because you know it has been said by Professor Girish that values are not taught, they are caught. So let's try to catch up this, you know, with the example, with the help of this example or a story I'm going to share later. Anybody please, how would you deal with the situation if there are two assignments which are identical submitted to you for a mark, so 25, 30, 50, whatever. How would you deal with this situation? Sir, please. Can we give a mic to sir? Is it possible the organizers could help us with a mic here?
In my opinion, both the students, they should be called by the teachers. And they should be asked with a great love, not just unko hame daantna nahi hai, ke who has done it. Give your own example, maybe false example. Although you may not be, you might not have a cheater in your life, आप उनको किसी ना किसी तरीके से आप उनके अंदर से उस चीज को निकलवाने की कोशिश कीजिए कि मैंने भी ऐसा किया था, कोई बात नहीं. When I was young, when I was in the college, I also used to do, although आपने ऐसा नहीं किया था, but अगर आप उनको दोनों में से एक को पुनिश करेंगे, in my opinion that is not okay. But अगर हम उनको आधा घंटा एक घंटा लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई उन दोनों में से ये मान जाएगा कि यस आई हैव डन इट. अदरवाइज परमानेंटली यू विल जस्ट लीव ए स्कार ऑन द स्टूडेंट. एंड आई टेल यू दिस इज माय एक्सपीरियंस. आई वाज अ टीचर इन कुशेता यूनिवर्सिटी. आई रिटायर्ड इन 2010. आई टॉट इन यूनिवर्सिटी, कुशेता यूनिवर्सिटी फॉर 40 ईयर्स. In my experience, students, they should be taught with love and affection and not with, jaise kehte hain na, punishment, sakti. In mere khyal se, koi bhi student jo hai, wo achhi tarah se nahi niklega agar unko hum sakti karenge. Aur definitely, student jo hai, wo aapke us pe aa jayega. Definitely, jaisa madam ne example diya, agar main wahan pe hota, to main उन दोनों को बुलाता और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर कर लेता, एक घंटे में, दो घंटे में, जैसा भी है.
थैंक यू सर.
इन माय ओपिनियन दैट्स माय ओपिनियन.
थैंक यू.
एंड आई लाइक टू गिव सम अदर ओपिनियन आल्सो आफ्टर दिस.
थैंक यू.
डिस्कशन इज ओवर. ओके, थैंक यू.
सो लेट्स इमेजिन देयर वुड बी, देयर आर 10 टीचर्स एंड दे फेस द सेम सिचुएशन. आई एम श्योर 5 ऑफ अस, यू नो आई एम आल्सो टीचर, would behave that we will take those answer sheet in the classroom, we will humiliate those two students, you have done cheating, ye kya hai, ethics nahi hai aapko, you know, chori karte hain class aise karte hain aur zero marks de rahe hain aur pura insult kara class mein.
एंड आई एम श्योर 10 में से 5-6 जरूर ऐसा करेंगे. सर ने जो बोला कि मैं उनको बुलाकर काउंसिल करूंगा, देयर कुड बी लिटिल मोर बेटर वे, यू नो, दोनों को बुलाए टीचर और दोनों को बात करने के बाद असेस करे किसने किया है. आई एम श्योर एज सर ने बोला कि एक जना मान जाएगा कि मैंने अपने फ्रेंड की अंडर पीयर प्रेशर हेल्प करी एंड उसको मैंने अपनी असाइनमेंट दी. नाउ आफ्टर दैट एज ए टीचर, यू नो, बिकॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर इज एन एथिकल इवैल्यूएशन एंड आई कैन नॉट गिव देम ग्रेड्स बिकॉज दैट देयर चीटिंग हैज हैपेंड. सो आई कैन गिव वन असाइनमेंट, फ्रेश असाइनमेंट टू बोथ ऑफ देम. I can give them some reasonable time to resubmit in front of me or later on and then give them marks. But during the discussion with them, the important is I do not humiliate them. I make them the importance of, you know, staying honest during exams, not believing in plagiarism at all. And I really make them feel that how, what kind of mistake they have done. So this was the most important thing. By doing that, what did we do? You know, policy, ma'am's question was, sister's question was, the dilemma. Dilemma could be, the policy says, if there's a plagiarism in the exams or in any assignment, assign them, teacher, I was bound to assign them zero. But the policy also says, in exceptional circumstances, we can give them second chance. So I put that situation as an exceptional situation where the second person who copied or who put the pressure to give him his copy was in certain kind of situation where he was not able to submit the assignment, and I took this or I presented this as a situation which is exceptional, and exceptional to make him or her learn about the ethics. Right? So halat to same the, situation was similar. It's only that how I perceive, how I take care of the policy of the organization, and how I really took a stand. So we all faced such situation, sister, for sure. We have to make sure that wherever we have such a condition, we just think what is more important. I need to put values, the life skill as a priority, or just the academic skills. Because sister Kiran was just talking about soft skills. I would say since morning we all are learning about life skills. Right? Academic skill, I am assessing just the academic skill in that exam. As a teacher, if I do remember that was just the academic skill. My responsibility as a teacher is to make a student learn about soft skills, technical skills and life skills. By counseling them about adverse effect of dishonesty and all, I really made both the children about the life skills, which is more important. So that's how we can handle such situation. Thank you.
Bahut bahut dhanyavaad Dr. Amarjeet ji ka. And now we'll take a pause from this deep reflection and we'll move into a celebratory mode. हमारे बीच में आदरणीय मृत्युंजय भाई हैं जो चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग के, और वो हमारे बीच में आ रहे हैं. और एक डॉक्टर अजीत सिंह राणा जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर एक बुक बनाई है अमृत ज्ञान. ओके, सो विल कंटिन्यू विद द पैनल डिस्कशन. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, would be to sir Dr. Anil Kumar Rai ji. Sir, अभी बात चल रही थी, बहुत गहरी चर्चा चल रही थी कि जैसे कहा कि एक स्टूडेंट अगर चीटिंग कर रहा है तो किस तरीके से हम उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं. एंड एज एन एजुकेटर आई थिंक वी हैव अ रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर आर स्टूडेंट्स. तो मैं पूछना चाहूंगी, आज एक बहुत बड़ा इश्यू है और स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो है बुलिंग. तो आपको क्या लगता है एज एन एजुकेटर, हाउ कैन वी एड्रेस दिस इश्यू? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास ये इश्यू रहता है कि सीनियर्स हैं या मान लीजिए कुछ ग्रुप्स हैं वहां पे बुलिंग होती है उनकी. तो आपको लगता है कि कुछ एजुकेटर्स का उसमें रोल हो सकता है?
बिल्कुल, ये जो एनवायरमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है वहां पर, हालांकि अभी ये प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो गई है कैंपस से, बहुत पहले इस तरह की समस्याएं होती थी, कुछ एक जगह पर है फिर भी ये बुराई, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ओवर प्रिकॉशंस अभी लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आती है तो उसमें सिर्फ डिस्कशन और बातचीत बच्चों के बीच में, चाहे सीनियर हो जूनियर हो, सिर्फ बताना यह है कि आप एक साल पहले यहां आए थे, ये एक साल बाद आए हैं, हो सकता है धरती पर एक साल पहले आपसे आए रहे हूं, तो इसलिए अपने आप को सुपीरियर समझने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे हम यहां बैठे हैं वो वहां बैठे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम उनसे सुपीरियर हैं, वी ऑल आर इक्वल। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो बच्चों की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी होती है। अभी स्टूडेंट्स के साथ में वो जो बुलिंग प्रॉब्लम है या फिर जूनियर सीनियर के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अब वो ढेर सारे इश्यूज होते हैं। एक तो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट अगर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर नहीं रहता है, सफिशियंट नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम आती है कि अगर टीचर पूरा स्टूडेंट के साथ समय नहीं दे रहा है, सिर्फ क्लास में गया, अपना 50 मिनट का एक घंटे का जो भी लेक्चर है लेक्चर लेके चला आया, फिर उसको स्टूडेंट से मतलब नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, स्टूडेंट्स के साथ में और दूसरी जो एक्टिविटीज होती हैं सॉफ्ट स्किल की या लाइफ स्किल की, वो एक्टिविटीज अगर स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है, सिर्फ टीचिंग टीचिंग टीचिंग, और जिसको स्टूडेंट जो है बहुत सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस टीचिंग का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है जो टीचर पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा उसको अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पर और दूसरी जगह पर हैं। तो इसलिए उसका सलूशन एक ही है कि कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज प्लान होनी चाहिए। एक कॉमन पहले स्कूलों में प्रार्थना हुआ करता था कि विद्यार्थी आता था तो जब क्लास शुरू होनी होती थी तो सारे स्टूडेंट एक साथ असेंबल होते थे, प्रार्थना होती थी, एड्रेस कोई स्टूडेंट करता था, प्रिंसिपल एड्रेस करते थे, टीचर एड्रेस करते थे, तो ढेर सारे जो कम्युनिकेशन गैप होते थे वो खत्म, या जूनियर सीनियर की फीलिंग खत्म हो जाती थी। एज ए टीचर मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। हमने जो है एक्सपेरिमेंट किया कि सुबह मॉर्निंग की जो क्लास है, ठीक है, प्रार्थना को कुछ स्टूडेंट दूसरे वे में लेते हैं, कुछ स्टूडेंट दूसरे, क्योंकि अलग अलग तरह के संस्कार के, अलग अलग तरह के सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम फिर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मॉर्निंग में करते हैं। फर्स्ट क्लास हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का होगा और उसमें हर क्लास अपने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है या फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा है, तो हर ईयर का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो एक अगर कॉमन प्लेटफॉर्म एक साथ तैयार होता है सारी स्टूडेंट को एक बार भी दिन में बैठने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान हो जाता है कि एक साथ अगर जूनियर सीनियर बैठते हैं टीचर के साथ में, तो फिर वह धीरे धीरे फिर सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए कि जूनियर सीनियर के साथ में या तो फिर सेमिनार सिंपोजियम या वर्कशॉप इस तरह के हों जिसमें एक तरह के सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, कल्चरल एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, इनको बढ़ाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। है भी नहीं, वैसे अब लगभग खत्म हो गई है, उतनी अब समस्या नहीं रही। स्कूल में ये थोड़ी बहुत समस्या है, सीनियर स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा समस्या भी नहीं है। जी
बहुत बहुत धन्यवाद ब्राता जी। और एक प्रश्न हमारा ऑडियंस के बीच में आया है, डॉक्टर संजय कुमार बारिक जी, आपने दो प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन उनका दूसरा प्रश्न है जो मैं आदरणीय किरण बहन जी से पूछूंगी। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थी और युवा टीचर्स के सामने आज के समय में बहुत चैलेंजेस हैं, तो सभी चैलेंजेस को कैसे बैलेंस कर लाइफ में आगे बढ़ा जाए। चैलेंजेस मोस्ट प्रोबेबली वर्क लाइफ चैलेंजेस हो सकते हैं, तो किस तरीके से खास करके लिए विद्यार्थी और जो युवा हैं, चाहे वो फैकल्टीज भी हैं, तो कैसे उन चैलेंजेस से बढ़ के आगे अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं।
जब हम युवा टीचर की बात करते हैं या विद्यार्थी की बात करते हैं तो इस वक्त हमारा फोकस शरीर की आयु पर है, राइट? तो जब शरीर की आयु पर मेरा फोकस है तो मेरी सोच उस हिसाब से चलेगी कि मेरी उम्र ऐसी है और इस उम्र के हिसाब से मेरे पास, मान लो कोई बच्चा है, से मैं जानती हूँ कि कुछ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स चलाते हैं, कुछ नेशनल लेवल के MBA इंस्टीट्यूट्स, इसमें जो बच्चे आते हैं वो कहीं 10 साल एग्जीक्यूटिव रह के आए हैं, कहीं बड़ी इंडस्ट्री से आए हैं एंड दे आर स्टूडेंट्स, और उनके सामने जो प्रोफेसर्स हैं उनकी एज में और इनकी एज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो वहाँ का एक केस एक बार मेरे पास आया, एक ऐसे इंस्टीट्यूट का, कि एक स्टूडेंट था और उस स्टूडेंट को वैल्यूज से कुछ विशेष लगाव था, कुछ वैल्यूज की स्टडी की थी उसने, कुछ रिलीजियस चीज़ों की, और जब वो वहाँ गया तो ये जो बुलिंग की बात कर चल रही थी वो सीनियर या जूनियर नहीं, वही उसी बैच के अंदर ही बहुत बुलिंग हुई उसकी, एंड बुलिंग बिकॉज कि जो लोग सब आए थे वो ये चाहते थे कि हमको, क्योंकि हम 40 लाख 45 लाख का लोन लेके आए हैं तो हमें एक अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। तो अब यहाँ जो स्टूडेंट आ रहा है, युवा स्टूडेंट आ रहा है, उसके पास जो एम है वो है अर्निंग, और जो प्रोफेसर्स वहाँ रखे गए हैं उनको ये कहा गया है कि इनकी लर्निंग करानी है। अब लर्निंग क्या करानी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ऐसी सिचुएशन के बीच में अगर हम उम्र को लेकर चलते हैं तो हम बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। इसके लिए जो एकमात्र उपाय है ना, जो कहा सेल्फ अवेयरनेस, तो जब हम सेल्फ अवेयरनेस में रहते हैं, अपनी डिग्निटी में रहते हैं। अब मुझे ये क्लियर नहीं है कि चैलेंजेस में आप वर्क लाइफ चैलेंजेस की बात कर रहे हैं या कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, पर कोई भी प्रकार के चैलेंजेस हों, वो चैलेंजेस को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका यही है। क्योंकि जो चैलेंजेस आते हैं वो हम सॉल्व तब नहीं कर पाते जब अंदर से मुझे क्लैरिटी नहीं होती है। जब सेल्फ अवेयरनेस पूरी नहीं होती तो अंदर से क्लैरिटी नहीं होती, मुझे रास्ता सूझता नहीं कि अब ये सिचुएशन आई है तो मुझे क्या। ये जो इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी भी है ये सेल्फ अवेयरनेस से आती है। प्योरिटी के जो लेवल हैं वो बहुत सारे हैं, इमोशनल प्योरिटी भी है, फिर इंटेलेक्चुअल प्योरिटी भी है। अगर युवा हैं और वहाँ कहीं इमोशंस को लेकर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो ये इमोशनल प्योरिटी की ज़रूरत है हमें। तो प्योरिटी को इम्बाइब करना डजंट मीन ओनली, जैसे फिजिकल प्योरिटी की हम बात करते हैं, इट्स अबाउट माई इमोशनल प्योरिटी, इट्स अबाउट माई इंटेलेक्चुअल प्योरिटी, ये सब भी। जैसे कई बार इंटेलेक्चुअल थेफ्ट होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर्स काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ एक अच्छा काम किया, किसी दूसरे ने अपने नाम से उसको पब्लिश कर लिया, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती। जो स्टूडेंट सामने बैठा है कई बार वो आपकी एज देख के हो सकता है कि आपको उस प्रकार से रेस्पेक्ट ना करता हो, क्योंकि वो भी कम्प्लीटली बॉडी कॉन्शियस में है। पर अगर आपका नॉलेज का लेवल, आपकी सेल्फ डिग्निटी, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिवोशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी उनके प्रति शुभ भावना, ये सब वो देखेगा तो स्लोली वो आपके शायद ये चैलेंजेस जो रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं उनके साथ वो सॉल्व हो सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा विचार है। आई थिंक आपको आंसर मिला होगा। थैंक यू।
बहुत बहुत थैंक्स किरण बहन, एंड वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ऑडियंस। और ये एक प्रश्न आया है, आदरणीय गिरीश भाई जी के लिए प्रश्न है। भाई जी, कोरोना के बाद काफ़ी कुछ हमने, वी हैव मूव्ड फ्रॉम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और कई कॉलेजेस में या स्कूल्स में भी टीचिंग्स ऑनलाइन होती हैं। तो बहन कह रही हैं, किरण बहन ही हैं, वो पूछती हैं कि जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो शायद हम एक स्टूडेंट को अपनी वाइब्रेशन से इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस नहीं होती। तो यहाँ मेरे दो प्रश्न मैं इसमें जोड़ती हूँ। पहला प्रश्न है कि वहाँ हम कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और दूसरा आज के इस ऑनलाइन जहाँ पे सोशल मीडिया और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं, तो एज एन एजुकेटर हमारी नैतिक जिम्मेवारी क्या होती है कि हम किस तरीके से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करें।
ओम शांति। प्रश्न सुन के मैं थोड़ा टेंशन में हूं। दो तीन प्रश्न उसमें पूछे गए हैं कि नंबर वन, जब हम आमने सामने मिलते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस इम्पैक्ट करती हैं, जब हम ऑनलाइन मोड में होते हैं तो हाउ डू वी इन्फ्लुएंस। मैं समझता हूँ ऑनलाइन मोड का अपने चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज वो जो विद्यार्थी जिस माहौल में है उसका अटेंशन का डिस्ट्रैक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। व्हेन आई एम डूइंग एन ऑफलाइन प्रोग्राम, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है, आई कैन मेक द स्टूडेंट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव अ लिटिल कंट्रोल ऑफ इट। लेकिन जब हम वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा इफेक्ट आपको बताना चाहूंगा। इट्स अ वेरी साइंटिफिक इफेक्ट, आप में से काफी लोगों ने इसको सुना भी होगा। इट इज कॉल्ड एज पिग्मेलियन इफेक्ट। आप में से कितने लोगों ने सुना है पिग्मेलियन इफेक्ट, प्लीज रेज योर हैंड। वन, ओके। 1968 में एक साइकोलॉजिस्ट, दिस इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था रोसनथाल। वो स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिल करके बच्चों को, छोटे बच्चों के स्कूल में जा, क्लास में जाकर उन्होंने एक एग्जाम लिया। सिंपल एग्जाम था, मे बी वी कैन कॉल इट एज एन आईक्यू टेस्ट। और सभी बच्चों का रिजल्ट उन्होंने अपने हाथ में लिया, और फिर क्लास टीचर को बुलाया गया और क्लास टीचर को कहा, रैंडमली उन्होंने 10 बच्चों को पिकअप किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और टीचर को कहा ये 10 बच्चों का रिजल्ट हमारे पास है एंड दीज 10 स्टूडेंट्स का ग्रेड या रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट दिखाया नहीं टीचर को, रिजल्ट प्रिंसिपल के पास और वो साइकोलॉजिस्ट के पास था। ओनली इट वॉज इन्फॉर्म टू द टीचर दैट दीज रैंडमली 10 पिक्ड अप स्टूडेंट्स, इनका स्कोर बहुत अच्छा है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपका वाइब्रेशन, आपका थॉट वो 10 बच्चों के लिए कैसा होगा? बहुत अच्छे हैं, असलियत नहीं मालूम, बट क्रिएट कर रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, इनके चार स्टेप्स होते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट के, हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस वेदर इट इज एन ऑफलाइन और एन ऑनलाइन मोड। और मुझे इतनी खुशी होती है आपको ये पिग्मेलियन इफेक्ट बताते हुए, वो साइकोलॉजिस्ट ने 1968 में इसको पता लगाया, एक्सपेरिमेंट किया एंड पुट इट टू द वर्ल्ड। 1937 से निराकार परमपिता परमात्मा सर्वोच्च शिक्षक बैठ करके इस गिरीश बच्चे को, ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पिग्मेलियन इफेक्ट करके चेंज कर रहा है, एंड आई वॉज एबल टू रिलेट टू इट। गिरीश भाई में बहुत गुस्सा था, बहुत ईगो था, बहुत अहम था, बहुत डर था, बहुत कॉम्पिटिशन था, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद वो सब नेगेटिविटी चला गया। तो पहला चीज, वो टीचर का बिलीफ सिस्टम अबाउट द अदर पर्सन, दे आर गुड, नो वैलिडेशन टू इट, नो प्रूफ टू इट। क्लास पढ़ाते पढ़ाते एक दिन टीचर ने उन बच्चों से साधारण सा प्रश्न पूछा, बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, इस 10 में से एक को पूछा बताओ इसका उत्तर क्या है। वो बच्चे ने साधारण सा प्रश्न था तो साधारण उत्तर और करेक्ट उत्तर दे दिया। पता है टीचर ने क्या कहा? देखा, मैं जानती हूं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। और वो छोटा बच्चा टीचर को ऐसे देखता है, यार मुझे ही नहीं पता मैं इंटेलिजेंट हूं, एंड यू नो दैट आई एम इंटेलिजेंट। फर्स्ट स्टेप, माई बिलीफ अबाउट द अदर पर्सन। नंबर टू, माई एक्शन अबाउट द अदर पर्सन। It is appreciation, it is acknowledgement, it is motivation. I know तुम बहुत intelligent हो. वो बच्चे को ही नहीं पता. गिरीश बच्चे को आत्मा को नहीं पता था. जो जितने भी पैनलिस्ट कह रहे हैं, आपको कंपैशन होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको फॉरगिविंग करना चाहिए, आपको जीरो सीधे जीरो नहीं डालना, आपको बुली नहीं करना, आपको इंसल्ट नहीं करना, ये सब हमारा मूलभूत नेचर है. लेकिन वो एक्शन में नहीं आता है, क्योंकि मुझे ही नहीं लगता है कि आई डोंट हैव माई बिलीफ सिस्टम अबाउट माई सेल्फ. नंबर थ्री, दिस इज द रिजल्ट पार्ट ऑफ इट. आप किसी को अप्रिशिएट करें, आप किसी को कहें आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत केयरिंग हैं, प्लीज बताइए उस व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम अबाउट यू और अबाउट देमसेल्व्स कैसा होगा. अच्छा ही होगा. वो बच्चे को टीचर अच्छी लगने लगी, वो बच्चे को टीचर का सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा, वो बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया. Now my belief system about myself, I am good, I can do it. And the fourth one, एक साल के बाद रोसंथाल ने आकर वापस उन्हीं बच्चों का एग्जाम लिया और इन 10 बच्चों का मार्क्स को रिकॉर्ड किया गया. एंड यू नो वट वॉज द सरप्राइजिंग रिजल्ट, ये 10 बच्चों का स्कोर सचमुच में अच्छा हुआ. पहले अच्छा नहीं था. चार चीजें की, माई बिलीफ सिस्टम अबाउट अदर्स, my actions towards them, मैंने acknowledge किया, their belief system about themselves, इसको हम कहते हैं self respect, इसको हम कहते हैं self confidence, इसको हम कहते हैं self esteem, यही है ना. उसको अपने बारे में अच्छा लगने लगा, मैं अच्छा पढ़ सकता हूं. And fourth, my actions towards the other person, वो बच्चा अच्छी तरह पढ़ने लगा, teacher का expectations को match करने लगा. क्या हम ये कर सकते हैं वाइब्रेशनल लेवल पर, भले ऑफलाइन हो, ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो. आज का मेरा क्लास बहुत अच्छा होगा, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे विल पे अटेंशन. सोचने में क्या जाता है, हम नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं, व्हाई कांट वी क्रिएट दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव एनर्जी. बस एक और वाइब्रेशन की मैं यहां पर बात करूंगा. आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस. आई वॉज डूइंग अ प्रोग्राम इन लखनऊ. वो स्कूल के बच्चे थे, 12वीं कक्षा के बच्चे थे, बड़े से ऑडिटोरियम में. दे हैड इनवाइटेड 2-3 स्कूल्स एंड टॉपिक था मन की बात. थॉट से ही वाइब्रेशंस बनते हैं. और मैंने फिर दीदी को पूछा, दीदी मुझे क्या बोलना है, मन के बारे में बोलना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मन के बारे में नहीं बोलना है, बच्चे अपना प्रश्न पूछेंगे, मन की बात. मैंने कहा हां प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, हम भी आज मन की बात कर लेते हैं. आई विल शेयर ओनली वन क्वेश्चन. एक स्टूडेंट ने भरी सभा में हमसे प्रश्न पूछा और कहा अंकल, एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट अ रिस्पॉन्स, एथिकल रिस्पॉन्स. एक बच्चे ने पूछा अंकल झूठ बोलना चाहिए या नहीं. थिंक ऑफ अ रिस्पॉन्स, इतनी भरी सभा में आपको पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे. देर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर. थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारीज, थैंक्स टू द वैल्यू सिस्टम दैट वी होल्ड, थैंक्स टू द क्लैरिटी दैट वी हैव. यू नो वॉट आई रिस्पॉन्डेड, मैंने उस बच्चे को कहा इस उम्र में भी आकर डिसाइड नहीं कर पाए, यू स्टिल वॉन्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम मी, अ थर्ड पर्सन शुड टेल मी. कितना लेक्चर्स, कितनी किताबें, कितनी मूवीज, कितनी अच्छी चीजें पढ़ ली कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए. एंड देन टूडे एट दिस एज 12 स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट अराउंड 16-17, यू नो वॉन्ट अ वैलिडेशन फ्रॉम मी. मैंने कहा बच्चे वो तेरे को डिसाइड करना है. पता मैंने क्या कहा, थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, मैंने कहा मैं उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर तुम्हें पता करना है. मैं अवश्य तुम्हें यह बता सकता हूं कि प्रश्न क्यों पूछा है. तो शायद वो मेरे बारे में सोच रहा था टकलू, एक तो तू सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है, ऊपर से मुझे पूछ रहा है कि प्रश्न क्यों पूछा. उन्होंने कहा बोलो अंकल प्रश्न क्यों पूछा. दोस्तों मे बी यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल साइकी ऑफ इट. हम शायद, वो बच्चा पता है क्या चाहता था, वो चाहता था कि गिरीश सर कह दे कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, वो पुण्य के खाते में होगा. ही वॉन्टेड अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम मी. और आज से वो कहे वाव, अंकल ने परमिशन दे दिया, मैं झूठ बोल सकता हूं. रिजल्ट आया घर में, मम्मी को बताना था, मुझको कम मार्क्स मिले, मैं किसी की भलाई के लिए झूठ बोल रहा हूं, इसमें गलत किया है, वो पुण्य के खाते में. आई एम सो मैनिपुलिस्टिक. मैंने कहा बेटा अगर मैं कैपिटल लेटर्स में कह देता नो, एन ओ, तो दुखी होता था. अब तुम
दूसरा गिरीश की खोज में जाता था जो कहता था किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है सच के खाते। बहुत ध्यान से सुनिए, हम अपनी कमी कमजोरी को दूसरों से वैलिडेट करवाना चाहते, इन्होंने भी तो किया, ये भी तो लेट आए, मैं भी आ सकता हूं, उन्होंने भी तो ऐसा किया तो मैं भी कर सकता हूं, पापा भी तो झूठ बोलते हैं मैं भी कर सकता हूं, घूम फिरा करके ये डिस्कशन का एकमात्र आधार मेरा फंडामेंटल सिद्धांत क्या है। ऑन अ सेकेंड नोट, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बिटवीन टू पीपल, चाहे वो पति पत्नी हो, टीचर एंड स्टूडेंट हो, कोई भी एक व्यक्ति संबंध में दूसरे व्यक्ति से झूठ क्यों बोलता है, क्या कारण है झूठ का? वेरी ट्रू, उसका आधार है डर। सो बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, इफ द स्टूडेंट इज लाइंग, प्लीज मान के चलिए मेरा उसके साथ संबंध इज नॉट हेल्दी। हम कितना भी कह लें वो डरता है मुझसे, और वो डर के कारण शायद जैसे मैडम ने कहा था असाइनमेंट को कॉपी कर लिया, और पहले वाले बच्चे ने जो स्पेलिंग मिस्टेक किया था दूसरे ने स्पेलिंग मिस्टेक ही कॉपी किया, वहां पे भी दिमाग नहीं लगाया। एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट दीज पीपल हैव कॉपीड। लास्ट एक चीज बताता हूं, हाउ डू वाइब्रेशंस गेट क्रिएटेड। मैं अपने क्लास में आया, देखा 10 बच्चे बैठे हुए, 60 में से ओनली 10-50 मास बंकिंग। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं होता था ना, तो मैं 2 घंटे भाषण देता था, किसको सुना रहा हूं जो पंक्चुअल है, वो 2 घंटे सुन के सोच रहे सर हमें काय डांट रहे हो, वो बाकी 40 को बोलो। हम अपना, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो ऐसा कभी नहीं करते, मैं तो मेरे बारे में, मैंने उन 10 को कहा सिंस यू आर हियर कैन यू टेल मी व्हाई द अदर्स आर नॉट प्रेजेंट। दे वर सो स्केप्टिकल। मैंने कहा चिंता नहीं करो आपको नहीं डांटूंगा। उन्होंने कहा सर मास बंकिंग है ना मूवी। मैंने कहा अच्छे बच्चे हैं यार मूवी देखने जा रहे हैं, चलो क्लास करते हैं। क्या वो बच्चों को वो रियलाइज हो सकता है कि 50 बच्चे एब्सेंट हैं लेकिन गिरीश सर को चिंता नहीं हो रही, इरिटेट नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द 50। उस 50 गलत के चक्कर में हम 10 को क्यों इरिटेट कर रहे हैं? ये कहां की बुद्धिमानी है, ये कहां का ज्ञान है, ये कहां का मेरा फंडामेंटल लोकस ऑफ कंट्रोल मेरे ऊपर है ना। एंड वो 10 मेरे बारे में सोच रहे सर हमें क्यों सुना रहे हो, आप पढ़ाना शुरू कर दो, हम तो पढ़ने के लिए बैठे थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ दीज लिटिल लिटिल थिंग्स क्रिएट वाइब्रेशन कि सर कभी इरिटेट नहीं होते, कभी बुरा नहीं मानते, अच्छे, देन वो आपके साथ शेयर करेंगे अपने चैलेंजेस, अपने प्रॉब्लम्स। एंड वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं हमारे विचारों से। तो क्या मैं ये विचार क्रिएट कर सकता हूं? आई लव दिस ब्यूटिफुल प्रोफेशन कॉल्ड एज टीचिंग, आई एंजॉय बींग अ टीचर, आई एंजॉय बींग इन द क्लास, आई एंजॉय पेपर करेक्शन, I enjoy invigilation, I enjoy administrative duties. इसके लिए मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मेरे बारे में कह रहा हूं। That also creates vibration. So anything and everything that comes, all stakeholders in the field of education, मेरे HOD ने कहा तुमको ये करना है, मेरे वाइस चांसलर सर ने कहा ये करना है, मेरे डायरेक्टर ने कहा है, मुस्कुराते हुए हां जी हां जी हां जी। निराकार परमात्मा ने क्या कहा पता है हमको? बच्चे तुम आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, झाड़ू भी लगाओ तो ऐसे मस्त लगाओ कि देखने वाले मुझे कहें जिंदगी भर झाड़ू लगाना, तुमसे अच्छा झाड़ू कोई लगाते ही।
बहुत सुंदर बात कही आदरणीय गिरीश भाई ने कि अगर झाड़ू भी लगाओ तो क्या कहना है। हमारे यहाँ कहते हैं हर चीज में सेवा भाव होनी चाहिए, और जहां सेवा भाव होती है उस परमात्मा की याद होती है तो ऑटोमेटिकली हर कर्म क्या बन जाता है, एक बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ एग्जाम्पल बन जाता है। तो मेरा अगला प्रश्न आदरणीय सुरेश जी से है। भाई जी एक प्रश्न आया है हमारे पास, और क्योंकि समय बहुत कम है हमें 12:30 तक सब कुछ वाइंड करना है, तो मैं चाहूंगी संक्षिप्त में अगर आप उसका जवाब दें। प्रश्न है कि शासन स्तर पर विद्यार्थियों के साथ कई बार कुछ गलत हो जाता है, तो आपके लिए एक शिक्षक का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो जैसे गिरीश भाई भी कह रहे थे, वो सोचते हैं दुनिया ने हमारे साथ गलत किया तो हमें भी कुछ गलत करना चाहिए, या उनका मनोबल भी गिर जाता है, तो ऐसे समय में शिक्षक का क्या स्टैंड होना चाहिए?
इस टाइप के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली रहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चे के साथ ठीक से वो नहीं किया, उसका रिजल्ट ठीक से नहीं निकाला, कहीं ना कहीं और उसके साथ जो उसको मिलनी चाहिए सर्विस वो नहीं मिली, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन ही बच्चों को कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आप रिप्रेजेंट करिए, जब उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, रिजल्ट गलत निकला, उसके एब्सेंट लगा दिया, उसका किसी कंपोनेंट में मार्क्स लगा, ग्रेड कम लग गया, अब वो बच्चा घूम रहा है लेकिन उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से अभी रिसेंट एक इंसिडेंट जिसको मैं देख रहा हूं, हमने एडमिशन किया अगस्त के अंदर, 25-30 ड्राफ्ट जो बच्चों ने फीस के जमा कराए थे वो बैंक को भी दे दिया, अकाउंट्स ने, बैंक के कहीं ड्रायर में पड़े रह गए, अभी फरवरी में उन्होंने उठा के हमें दे दिए कि इनकी डेट निकल गई है, इनको रिवैलिडेट करा दीजिए। मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, पता नहीं मेरी यूनिवर्सिटीज को आप किस एंगल से देखते। अब अकाउंट ऑफिसर ने मेरे को लेटर लिख के भेजा कि 28 बच्चों के ड्राफ्ट है, इनको बोलिए अपनी लेट फी के साथ दोबारा जमा कराएंगे। मैंने उसके अकाउंट से वाले फोन से बात की, भाई वो बच्चा क्यों लेट फी के साथ जमा कराएगा, गलती तो आपकी है जब बैंक की है कि उन्होंने जमा नहीं कराया। तो टीचर्स को कहीं ना कहीं दोनों के बीच के अंदर एक ब्रिज का काम करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से बच्चों का पक्ष रखना चाहिए, रिजल्ट गलत निकल गया कुछ भी निकल गया, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोलर को बताना चाहिए कि बच्चे की गलती नहीं है, लेट्स इन्वेस्टिगेट, कहां पे इसकी आंसर बुक चेक करते हैं, इसकी अटेंडेंस चेक करते हैं, बच्चे को तो लास्ट में इन्वॉल्व करेंगे अगर वो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो हमें अपने सिस्टम के अंदर इन्वेस्टिगेट करके या उसके कारण पता लगा के उसको अपने आप अपने लेवल पे समाधान करना चाहिए, उसे बच्चे को स्ट्रेस में नहीं डालना है, बच्चे को उसमें के लिए पनिश नहीं करना है, जब वो ये मेरा मानना है। टीचर का रोल वहां पे इंपॉर्टेंट है, क्या स्टूडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं पहुंचता, एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्लास सीलिंग रखता है अपने बीच में जो टीचर को नहीं रखनी चाहिए, और टीचर ग्लास सीलिंग नहीं रखेगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। टीचर तो जाके वाइस चांसलर या प्रिंसिपल या जो भी है उससे बात कर सकता है, बच्चे की वहां तक पहुंचने की वो नहीं है क्षमता नहीं है उसके पास वो नहीं है। तो ये मेरा मतलब कि जो है कि टीचर को इसके बीच में ब्रिज का काम करना चाहिए, अगर स्टूडेंट की इशू है उसको सुने, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर ले, और 99.9% में वो एक फोन कॉल से एक व्हाट्सएप मैसेज से रिजॉल्व हो जाता है।
सामान्यतः टीचर उल्टा करता है,
स्टूडेंट्स को कहता है कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तुम जाओ शिकायत लेकर के। ठीक, मैं स्टूडेंट को बोलता हूं तुम बैठ, मैं तुम्हारे टीचर को बुलाता हूं, वो क्यों नहीं आए तुम्हारी बात लेकर के। तो इसमें टीचर को जैसा कि सर ने कहा कि ब्रिज का रोल निभाना चाहिए, और विद्यार्थियों की समस्या शिक्षक के स्तर पर समाधान हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को आकर के समझा नहीं पाएगा या घंटा भर इंतजार करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा, शिक्षक कभी भी आकर के 10 सेकंड में उस बात को समझा सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मुझे लगता है शिक्षक अगर कभी कभी क्या है ना, शिक्षक विद्यार्थियों की अपेक्षा ज्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, प्रिंसिपल से या वाइस चांसलर से चिढ़े रहते हैं, तो सोचते हैं मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इसे भेजते हैं ये जाए लेकर के। तो ये मुझे लगता है कि भावना खत्म करनी चाहिए, ये समस्याएं रोज आती रहती हैं इस तरह की। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद हमको, हम जितना संवेदनशील होते जाएंगे, अपना हृदय को और बड़ा करेंगे, तो शायद हमको उनकी सोच भी समझने की जो कैपेसिटी है हमारी वो बढ़ेगी, कंपैशनेट हमें होने की शायद ज़्यादा आवश्यकता है। और एक और प्रश्न आया है, हम ये आखिरी प्रश्न है, ये मैं आदरणीय डॉक्टर अमरजीत जी से पूछ रही हूँ। प्रश्न आया है डॉक्टर विजय जी का, How National Education Policy 2020 will play an important role in holistic development of child? और आपको लगता है क्या कि कुछ spiritual organizations अगर इसका हिस्सा बने, participate करें, तो शायद ये ज्यादा सफल हो पाएगी?
Thank you very much. Question बहुत valid है। NEP 2020 का वन ऑफ द पिलर इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, दिस इज वन ऑफ द पिलर ऑन विच द एनईपी 2020 इज बेस्ड अपॉन। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट येस शुड वी इन्वॉल्व स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रह्म कुमारीज, और सो आई विल शेयर एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। वी हैव हैड एन एमओयू विद ब्रह्म कुमारीज पालम विहार सेंटर, वी आर इंट्रोड्यूसिंग यू नो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी through the positive thinking. So one of the course under value addition head, we have many categories of under NEP. So as a VAC course, we are introducing this subject. Not only that, before NEP, actually I introduced subject life lessons from Bhagavad Gita initially, later on life lessons from ancient wisdom. So this is what I did about 7-8 years ago when NEP was not introduced, and that we were doing in collaboration with Satya Sai organization. So their trained trainers, who are actually professional CAs, doctors, they were devoting their time on teaching life skills to youngsters. And I have seen significant improvement in the compassion quotient, in the patience, in response time and response type of students. You know, how do they respond to different situations, different exams, etc. So we have seen their performance improvement even during interviews. So this is tested by us, as a dean, as a director, I have tested this, and it has worked very well in my institution. So the answer is yes, it really works, because I can vouch for with the help of my example we had faced. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सभी से भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे पूरे भारतवर्ष में कई सेंटर्स हैं, और वहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी भाई और बहनें हैं. जो आज आप ये ज्ञान सुन रहे हैं, वो ज्ञान खुद अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, और ये सेवा अर्थ निशुल्क सेवा के लिए वो तैयार भी रहते हैं. तो आप में से जो भी पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, अगर वो चाहें तो हमेशा ब्रह्मा कुमारी का सहयोग ले सकते हैं. हम लोग हमेशा तैयार हैं, और इस सेवा के लिए परमात्म शिक्षा देने के लिए, परमात्म शक्तियां सब में लाने के लिए हम तैयार हैं. और इस पैनल को हम यहीं पे समाप्त करेंगे. जैसे आज हमने सभी पैनलिस्ट को सुना, और बहुत सुंदर एक निष्कर्ष निकला है, दैट टीचिंग इज नॉट अबाउट फिलिंग माइंड्स, बट इट इज अबाउट टचिंग द हार्ट्स. और अगर हम अपने अंदर वो कंपैशन लाएं, क्लैरिटी लेके आए अपने अंदर, वो इनर पावर लेके आए, तो निश्चित ही हम ना सिर्फ अपने लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं, लेकिन विश्व के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं. और मैं सिर्फ आदरणीय किरण बहन से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो तीन प्रैक्टिसेस जो एजुकेटर्स को पूरे दिन में अगर वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, थ्री मेन प्रैक्टिसेस, जिससे उनकी सेल्फ एम्पावरमेंट हो सके, संक्षिप्त में थ्री मेन टिप्स कहें या प्रैक्टिसेस जो अपने जीवन में अप्लाई करें.
ओम शांति. हम सब अगर अपनी लाइफ के हर प्रकार के चैलेंजेस को सक्सेसफुली चैलेंजेस को फेस करके विजयी बनना चाहते हैं, और हमें शक्तिशाली बनना है, तो शक्तिशाली बनने के लिए हमें जो सोर्स ऑफ पावर्स है उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा. पावरफुल बनने के लिए जो सोर्स ऑफ पावर्स है उनका परिचय हमें चाहिए. तो जैसे आज आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता चला, कल आपको परमात्म परिचय मिलेगा, जो सोर्स ऑफ वैल्यूज, सोर्स ऑफ पावर्स है. तो एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस हमारे यहाँ होती है, जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं. ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप हर घंटे में, जैसे सपोज आप इंस्टीट्यूट में हैं, आप एक लेक्चर लेके आते हैं, उस लेक्चर में सब चीजें जैसी आपने प्लान की थी वैसी नहीं हुई, और किसी कारण से आपको थोड़ा सा लगा कि कुछ अपसेट है, तो जस्ट सिट डाउन और एक मिनट निकालिए, और एक मिनट के लिए कनेक्ट कीजिए सेल्फ अवेयरनेस के साथ, अपने आप को, अपनी आत्मा की पहचान के साथ परमात्मा से कनेक्ट करें. तो एक घंटे में एक मिनट, नंबर वन. ये प्रैक्टिस आप सबके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपको पावरफुल बनाएगी. दूसरा, रात को सोते वक्त जो आजकल हमारी हैबिट है कि मोबाइल, वो गैजेट्स हाथ में होते हैं, और सोते वक्त वो सारा देख कर स्टेटस अपडेट्स और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें सुन के, पढ़ के सोते हैं हम, या जो कुछ सारे दिन भर में हुआ, वो लास्ट लेयर ऑफ माइंड जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर वो लास्ट लेयर आपकी क्लियर नहीं होती है और उन्हीं सब चीजों के साथ वो पाइल आपके माइंड पर है और आप सो जाते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही फिर आपका जो दिन की शुरुआत है वो उसी से होती है और फिर सारा दिन भी उसी डायरेक्शन में चलता है। मतलब रात को क्लियर करना अपने मन को ये बहुत जरूरी है। तो रात को सोने के पहले ये सजेस्ट किया जाता है हमारे यहाँ, एक तो हम ये गैजेट सोने से कम 1-1.5 घंटा रख दें, है ना। डिजिटल वेलनेस में आप ये सब डिस्कस करेंगे, हो सके तो शाम 8-8:30 के बाद इन गैजेट्स को हाथ ना लगाएं और रात को सोने के पहले 10 मिनट कम से कम 5 या 10 मिनट बैठकर फिर से मेडिटेट करके सारी बातें दिन भर की ना परमात्मा को अपना पिता समझकर उनको सौंप दे, सब मन क्लियर हो जाएगा आपका और हल्के मन के साथ सोइए। और तीसरा, सुबह उठते ही पहला थॉट है ना आपके मन में क्या आना चाहिए, वो परमात्मा के बारे में जो सोच के सोए वो तो आएगा ही, लेकिन अपने लिए भी सेल्फ रेस्पेक्ट से भरपूर थॉट्स क्रिएट करें। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम ब्लिसफुल, सब कुछ मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, आज का दिन बहुत अच्छा जाना है, है ना, मेरे लाइफ में सब तरफ से खुशियों का है ना, खुशियों की बौछार है। अच्छा अच्छा सोचिए, जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो सब हो रहा है, हमें सोचना वो है जो हमें चाहिए। जो हो रहा है उसमें से कुछ चीजें हो सकता है कि हमें उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो वो हमारी पिछली सोच का परिणाम है। तो एक, मेरी मॉर्निंग कैसी हो, दूसरा हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, और तीसरा रात को अपने माइंड की लास्ट लेयर क्लीन करके ही हम सोएं। ये 3 प्रैक्टिसेस आपको पावरफुल बनाने में बहुत सहयोग करेंगी।
बहुत शांति। बहुत बहुत थैंक्स किरण बहन जी का, और मैं पुनः सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी पैनलिस्ट को थैंक्स देंगे, और आप सभी के जो भी प्रश्न अगर बचे हैं वो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें आप पुनः दे सकते हैं। और रिक्वेस्ट रहेगा कि जब पैनल डिस्कशन है तो जो थीम है उससे रिलेटेड अगर आप प्रश्न देते हैं, जो भी ज्ञान युक्त प्रश्न हैं आपके, वो जो हमारे सुबह के मॉर्निंग सेशन है राजयोगा के सेशन, उनमें आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड ओम शांति। 2 मिनट उस परमात्मा की याद से हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे।